हरे कृष्णा। तो इस प्रकार नम्रता से राजा दशरथ ने मंत्रियों को बुलाया और सलाह किया। वशिष्ठ मुनि ने अश्वमेध यज्ञ करने का सलाह दी। उस समय उन्होंने बताया कि इस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए एक अश्व की आवश्यकता होती है, गिना चुना अच्छी तरह से चयन किया हुआ अश्व। और अश्वमेध का मतलब है अश्वमेध, जो अश्व के अस्तित्व को शुद्ध करने वाला है। और जब यह कार्य होता है तब वो यज्ञ को अश्वमेध कहते हैं, जिसको अश्वमेध को साल भर लगता है। वो अश्व को आठों दिशाओं में, दस दिशाओं में भेजना पड़ता है। जब वो अश्व जाएगा और किसी राज्य में प्रवेश करेगा तो वहाँ का राजा या तो प्रेम से उस अश्व को स्वागत करेगा, उसकी खातिर करेगा, उसको भोजन कराएगा, और जिस राजा की तरफ से अश्व आया है उसका आधिपत्य स्वीकार करेगा, भोजन देख साथ में दक्षिणा देगा, पारितोषिक देगा, बख्शिश देगा, और फिर अश्व अगले राज्य की ओर बढ़ेगा। इस प्रकार से भ्रमण करते हुए एक साल पूरा लग जाता है। वो अश्व पूरे विश्व में भ्रमण करेगा और सब जगह पर मित्रता के साथ में विजय प्राप्त करके आएगा। अगर कोई राजा उस अश्व को, उसके आधिपत्य को, उसके आक्रमण को, उसके चुनौती को स्वीकार कर लेता है, नहीं मानता है कि अश्व भेजने वाले राजा का मैं दास बनूं या मित्र बनूं, तो फिर युद्ध होता है। फिर अश्व भेजने वाला राजा उस राज्य पर आक्रमण करता है और अगर विजय प्राप्त कर लेता है तो अश्व फिर आगे बढ़ता है, नहीं तो दोबारा विजय प्राप्त कर ले दोबारा आक्रमण करना पड़ता है। इस प्रकार से पूरी तरह से पृथ्वी पर सार्वभौमत्व प्राप्त करना पड़ता है। एक साल के बाद जब अश्व लौट के आता है फिर वो यज्ञ होता है जिसको अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। वशिष्ठ मुनि ने बताया कि इस यज्ञ के लिए मन की, तन की, भावना की पूरी तरह से पवित्रता आवश्यक है, खास करके राजा और मंत्रियों की। और इस यज्ञ में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, कोई दोष नहीं होनी चाहिए, उसका पूरा विवरण वशिष्ठ मुनि ने समझाया। राजा को आश्वासन दिया, इस यज्ञ को सफल करने के लिए पूरी तरह से हम अपना हृदय जोड़ेंगे, तन मन से, धन से इस यज्ञ को यशस्वी करने के लिए व्यवस्थापन करेंगे, उसका आयोजन करेंगे। ये सब सभा समाप्त हो गई। राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हो गए कि कुछ ना कुछ सुझाव मिला, सब चले गए। उसके बाद में सबसे ज्येष्ठ मंत्री, सबसे बुद्धिमान मंत्री सुमंत्र रुक गए। दशरथ से कहने लगे कि मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ जो किसी को पता नहीं है। मैंने सनत कुमार ऋषि के मुख से सुना है कि भविष्य में आप दशरथ राजा इस सुंदर यज्ञ को करेंगे और इसका पौरोहित्य श्रृंगी ऋषि करेंगे, ऋषि श्रृंग। तो दशरथ ने पूछा ये कौन है। सुमंत्र के ज्ञान पर, अनुभूति पर, साक्षात्कारों पर और सुझाव पर राजा को पूर्ण विश्वास था। उन्होंने उनके वचन की सत्य असत्यता तो ढूंढने का प्रयास नहीं किया। तो राजा दशरथ को सुमंत्र ने एक कहानी सुनाई कि ये श्रृंग जो है वो विभांडक ऋषि के पुत्र थे। विभांडक ऋषि को जब ये पुत्र हुआ तो उस इस पुत्र को लेकर वन में चले गए और वन में जाने के पश्चात विभांडक ऋषि ने इस अपने पुत्र को बड़े ही विशिष्ट प्रकार से रखा। कैसे रखा, कोई पका हुआ अन्न नहीं खिलाया, यानी कि चूल्हा जलाने के बाद में जो अन्न बनता है उसको कभी नहीं खिलाया, केवल कंदमूल फल फूल जो वन में प्राकृतिक रूप से मिलते हैं वही खिलाने का प्रबंध किया। उसके बाद में किसी भी स्त्री का दर्शन नहीं कराया, अपनी माँ को भी नहीं देखा उसने, केवल विभांडक ऋषि और वन में रहने वाले पुरुष ऋषिगण और श्रृंगी। नाम श्रृंगी क्यों पड़ा, उसके सिर पर एक बड़ा श्रृंग था, हॉर्न जिसको हम कह सकते, इसलिए उसका नाम श्रृंगी था। फिर अंगदेश, अब हमने बताया पहले ही कि अंगदेश के राजा रोमपाद को दशरथ की कन्या प्राप्त हुई थी, गोद में गोद ली गई थी। उसके राज्य में एक बार अकाल पड़ा। तो आज के जमाने में तो जब अकाल पड़ता है, बारिश आती है या नहीं आती है, या बहुत ज़्यादा आती है, अतिवृष्टि होती है या वृष्टि होती ही नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी को। राजा अपने आप को जिम्मेदार समझता ही नहीं है, वो क्या करें ऐसे बोलते हैं। लेकिन राजा के पवित्र या ना पवित्र होने पर, राजा के पाप और पुण्य के हिसाब से प्रजा पर बारिश की वर्षा होती है, पर्जन्य वृष्टि होती है। तो रोमपाद राजा जब उसके राज्य में अकाल पड़ा था, बहुत दुखी हो गया, क्योंकि मैं जिम्मेदार हूँ मेरे पुण्य कर्मों के कारण प्रजा को पर्जन्य वृष्टि प्राप्त कराने के लिए, और मेरे राज्य में अभी पर्जन्य वृष्टि नहीं हो रही है। तो तुरंत संतों का सभा बुलाया। देखिए, आप इतिहास में पढ़ेंगे, जब जब कोई समस्या आती है या जब जब कोई शुभ घटना भी होती है, संतों को बुलाते हैं। जब शुभ घटना को बनाने का, उत्सव बनाने का समय आता है, संतों को बुलाते हैं, उनके सान्निध्य में, ब्राह्मणों के पठनों के बीच में, श्लोकों के पठन में उत्सव मनाए जाते हैं। और दुख आता है, संकट आता है, समस्या आती है, तो ब्राह्मणों को, संतों को बुलाते हैं, उनसे सलाह करते हैं। संतों ने बताया कि अगर ऋषि श्रृंग आपके राज्य के भूमि पर अपने चरण रखते हैं तो आपके राज्य में वर्षा होगी। एक जगह और भी लिखा है, संतों ने ऐसा सलाह दिया कि अगर ऋषि श्रृंग आपके राज्य में आकर यज्ञ करते हैं तब वर्षा होगी। दोनों बातें सही हैं कल्पभेद के अनुसार, तो फिर भी इसको लाए कैसे? इनका तो इतिहास उनको बताया गया था कि इनको तो स्त्री का दर्शन भी हुआ नहीं है, ये कभी शहर में आए नहीं हैं, केवल वन में ही रहे हैं, उपवन में भी नहीं आए। स्त्री का दर्शन नहीं है, पकवान नहीं है, मिठाई नहीं, मिष्ठान नहीं है, कभी कुछ देखा ही नहीं उन्होंने, केवल पुरुषों को देखा है। तो राजा ने फिर योजना बनाई। उन्होंने अपने राज्य की सुंदर सुंदर अप्सरा जैसे सौंदर्य जिनका था, ऐसे स्त्रियों को ऋषि का रूप धारण बना, ऋषि का वेश पहनाया, बहुत सारी मिठाइयाँ उनको दी, बहुत सारे लोग भेजे उनके साथ में। और जिस वन में विभांडक पुत्र श्रृंगी ऋषि विराजमान थे, उसके सीमा के बाहर पास में ही एक आश्रम बनाया। वो लोग जो आए थे आश्रम बनाए और चले गए। फिर ये जो स्त्रियां थी जो पुरुष ऋषि का वेश बनकर वहां रहने लगी, वो इंतजार करने लगे। फिर एक दिन अपने आश्रम के लिए कंदमूल ढूंढे ढूंढे ऋषि श्रृंगी वहां पर आए। ऐसे तो ये युवा अवस्था में थे, लेकिन बड़े निरागस और निष्पाप थे वो। जैसे ही वो उनके पास आए, दूर से देखा कि श्रृंगी आ रहे हैं, तो ये सब स्त्रियां जो पुरुष ऋषि बनकर खड़े हैं वो आ गए और उन्होंने उनसे वार्तालाप शुरू किया। उनको मिष्ठान भोजन दिया, ये वो अद्भुत प्रकार का फल है। तो श्रृंगी ने उस फल को खाया, उस मिष्ठान को खाया, तो उनको लगा यार जंगल में मैंने कभी ऐसा फल नहीं खाया, इतना स्वादिष्ट फल, इतना स्वादिष्ट मूल। और ये कहते कहते उन्होंने और उनको मिठाई खिलाई, उनको और आनंद आया, फिर मीठी मीठी बातें करने लगी। तो उनको लगा ये बड़े विशिष्ट प्रकार के पुरुष हैं, इनकी आवाज़ भी अलग है, इनका शरीर का आकार भी अलग है, इनकी अदाएँ भी अलग अलग हैं। लेकिन केवल उनको स्त्री नाम की वस्तु पता ही नहीं थी, इसलिए वो देखते रहे। अचानक उन स्त्रियों ने आके उनको आलिंगन दिया। जैसे आलिंगन दिया, उनको एक विचित्र प्रकार का अनुभव आया। उनके पिता ने, उनके साथ वाले ऋषियों ने, काका ऋषियों ने उनको आलिंगन कई बार दिया था, लेकिन इस आलिंगन में जो अद्भुत अनुभव उनको हुआ, उसके बारे में वो रात भर सोचते रहे। आलिंगन दिया और सब ये ऋषि बने हुए जो स्त्रियां थी फिर अपने झोपड़ी में चली गई रात में। रात भर आज खाए हुए अद्भुत अन्न और आज मिला हुआ आलिंगन, इस पर वो चिंतन करते रहे। चित्त उनका विचलित हुआ, अस्वस्थ रहा, और ऐसी एक अनजान कशिश मन में पैदा हुई दोबारा उन ऋषियों को मिलने के लिए, उनका संग करने के लिए। तो दोबारा वो सुबह कल अगले दिन वहीं पहुंचे। अगले दिन फिर उन्होंने अलग प्रकार की मिठाइयाँ उनको खिलाई, जो कल नहीं खिलाई थी आज दूसरी खिलाई। उसका आस्वादन लेकर वो और भाव विभोर हो गए और फिर कहने लगी वो स्त्रियां जो ऋषि बनी हुई हैं कि अभी हम जा रहे हैं, और दोबारा उनको बहुत कड़ा आलिंगन दिया, प्रेम से आलिंगन दिया, कई देर तक आलिंगन में रखा उनको। एक एक करके सभी स्त्रियों ने जो ऋषि के वेश में थे उनको आलिंगन दिया, और सबको आलिंगन करते हुए अद्भुत प्रेम की अनुभूति श्रृंग ऋषि को प्राप्त हुई। फिर उन ऋषियों ने कहा कि ऐसे बहुत सारे ऋषि हमारे राज्य में हैं, और ऐसे बहुत सारे फल जो मिष्टान के रूप में थे वो हमारे राज्य में हैं, ये तो हम कुछ लेकर आए हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप चले हमारे साथ। और उनकी मीठी मीठी बातों को सुनकर, मधुर मधुर वाणी को सुनकर श्रृंगी प्रभावित हो गए और वैसे ही चले उनके साथ, उनकी नाव पर बैठे। वो नाव भी एक बड़े महल की तरह थी, उसमें बैठकर गीत गाते हुए मधुर मधुर वाणी में वो सब रोमपाद के अंग देश में पहुंच गए। और जैसे ही उन्होंने रोमपाद राजा के अंग देश में प्रवेश किया, तुरंत गड़गड़ाहट होकर वर्षा हुई। अलग जगह पर लिखा है कि उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ के अंत में तुरंत ही घनघोर वर्षा हुई। रोमपाद राजा बड़े प्रसन्न हो गए, जो कहा गया था, जो सलाह दी गई थी वो सत्य हो गई। उस समय राजा अपनी कन्या जो दशरथ की कन्या थी, गोद ली हुई थी, शांता को लेकर श्रृंगी के सामने आए और हाथ जोड़कर नम्रता से उन्होंने, राजा रोमपाद ने श्रृंगी राजा के चरणों में वंदन किया और कहा है ऋषिवर, मैं आपका बहुत ऋणी हूँ, आप हमारी कन्या का पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब जाकर ऋषि को ये साड़ी यंत्र का बोध होता है, अरे मुझे इस तरह से फंसाया गया। लेकिन राजा का उद्देश्य बड़ा पवित्र था, स्वार्थी नहीं था, खुद के भोग के लिए नहीं था, प्रजा के कल्याण के लिए था, इसलिए श्रृंगी ने उस अपराध को स्वीकार न करना ये का निर्णय ले लिया कि हम इसका अपराध के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। और तब तक तो उन्हें स्त्री के विषय में आकर्षण पैदा हुआ था, शांता बहुत सुंदर थी, राजपुत्री थी, राजा बड़े नम्र थे, निवेदन लेकर आए थे, तो उन्होंने तुरंत उनके साथ में विवाह कर लिया। और विवाह करने के बाद में राजा ने कहा, आप तो ऋषि हो, हमारे राज्य में रहो, हम आपके लिए महल बनाते हैं, हमारे राज्य में पति पत्नी बड़े आनंद से रहो। तो श्रृंगी उस तरह से आनंद में वहाँ पर रहने लगे। ये कहानी सुना रहे हैं आर्य सुमंत्र राजा दशरथ को, क्योंकि राजा दशरथ ने पूछा था कि ये श्रृंगी कौन है, इसके उत्तर में ये पूरी कहानी सुमंत्र ने दशरथ को सुनाई। फिर दशरथ जी को सुमंत्र ने कहा, वैसे भी शांता आपकी बेटी है, तो वो सगे जमाए तो आपके लगते हैं, और आप अगर पहुंचेंगे अंग देश में और विनती करेंगे तो सारा कार्य सफल हो जाएगा, सनत कुमार की वाणी भी यशस्वी हो जाएगी, सत्य में आते हुए नजर आएगी। इस प्रकार से राजा दशरथ जो है वो तुरंत अपनी सेना को लेकर अंग देश चले गए, संपत्ति के साथ, दान दक्षिणा के साथ, गोधन के साथ अंग देश पहुंच गए। और उन्होंने श्रृंगी ऋषि को प्रणाम किया, अपनी स्थिति को बताया, आर्य समुद्र ने स्थिति का वर्णन किया, समस्या का वर्णन किया। बड़ी अच्छी सभा हुई, बहुत अच्छी चर्चा हुई, उसमें भी अश्वमेध यज्ञ करने की सलाह श्रृंगी ऋषि ने दी। उन्होंने कहा कि आपके लिए वास्तव में पुत्र कामिष्टि यज्ञ करना है, पुत्र काम इष्टि, पुत्र की इच्छा से किया हुआ यज्ञ, काम यानी इच्छा, पुत्र यानी पुत्र, पुत्र कामिष्टि यज्ञ जब करेंगे तब आपको संतान प्राप्त होगी। आर्य सुमंत्र ने पहले भी कहा था कि सनत कुमार जी ने कहा था कि श्रृंगी राजा यज्ञ करेंगे तो राजा दशरथ को तेजस्वी पुत्र प्राप्त होंगे, एक नहीं अनेक पुत्र प्राप्त होंगे, तो दशरथ की कीर्ति को बढ़ाएंगे, रघुकुल की कीर्ति को बढ़ाएंगे, ऐसा वर्णन किया था। और श्रृंगी एक श्रेष्ठ ऋषि होने के नाते उनका भी यह सब ज्ञात था, तो उन्होंने बताया कि आपकी पवित्रता की परीक्षा होनी बहुत जरूरी है, मैं जानता हूं आपका, आप मेरे ससुर जी हो, मेरे पत्नी के पिताजी हो, आपका गौरव मैं जानता हूं, सुना भी हूं, फिर भी अश्वमेध यज्ञ जब सफल होगा तब आप पुत्र कामिष्टि यज्ञ करने के लिए योग्य हो जाएंगे। मानो हमारे कैसे होते ना, प्रीलिमिनरी एग्जाम होती है, फाइनल एग्जाम के पहले एक एग्जाम होती है, वो परीक्षा में जैसे हम अंक प्राप्त करते हैं तो पता चलता है कि जो आखिरी एग्जाम परीक्षा आने वाली है उसके लिए हम कितने तैयार हैं और कितने अंकों का उम्मीद कर सकते हैं कि हमें कितने अंक मिलेंगे, और कुछ त्रुटियां रह गई तो बीच में समय मिलता है जिससे हम उन त्रुटियों को पूरा करके जितने अंक इसमें मिले हैं उससे अधिक अंक आखिरी परीक्षा में प्राप्त कर सकते हैं। उस प्रकार से श्रृंगी ऋषि ने बहुत अच्छी तरह दशरथ को समझाया कि अश्वमेध जब यज्ञ करेंगे तो उसके बाद में आप पुत्र कामेष्टि का यज्ञ करने के लिए तैयार हो जाओ। तो फिर सुंदर अश्व का चयन किया गया, उसको सजाया गया, उसको अलंकार पहनाए गए, उसको वस्त्र पहनाए गए उसके पीठ पर, और उसके पीछे सेना को लेकर उसको छोड़ा गया। और अहो आश्चर्यम, राजा की कीर्ति, राजा की ख्याति, राजा के चरित्र का वर्णन पूरे विश्व में फैल गया था। जहां जहां ये अश्व गया वहां वहां सभी राजाओं ने आदर के साथ में अश्व का स्वागत किया, अश्व का पूजन किया, अश्व को भोजन कराया, अश्व का सत्कार किया। दशरथ का ही सत्कार कर रहे थे, कहीं भी युद्ध प्रसंग नहीं आया। ऐसा अबाधित राजा पृथ्वी को प्राप्त था उस समय। आज विश्व में कई प्रकार के देश दुनिया का, विश्व का नेतृत्व करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो नेतृत्व करने का प्रयास कर रहे हैं उनको बाकी देश चाहते नहीं हैं, लेकिन उनके बल के प्रभाव से बलपूर्वक उनका नेतृत्व उन पर लादा जाता है। लेकिन आप देखिए दशरथ महाराज की कितनी महानता थी। उन्होंने अपने पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध करने का प्रयास किया तो सभी विश्व के जितने राज्य थे, जितने देश थे, जितने राजा थे, उन्होंने प्रेम से, इच्छा से, मन से उनको स्वीकार किया। फिर भी उनका साम्राज्य इतना दूर दूर तक फैला था कि उस घोड़े को लौटने में 1 साल लगा। 1 साल में जब दिग्विजय करके जब वो अश्व लौट के आया तो अयोध्या में बड़ा आनंद हुआ। क्यों आनंद हुआ? क्योंकि हमारे राजा ने जो संतों से, मंत्रियों से मंत्रणा करके जो निर्णय लिया, उसके अनुसार जो कदम उठाए, फिर ऋषि श्रृंग को लेकर आए, उन्होंने जो आदेश दिया उसका पालन करते हुए ये जो घोड़ा है वो लौट के आया है, इसका मतलब अभी यज्ञ जो करेंगे वो सफल होगा ही। फिर ऐसे कहा गया है कि वशिष्ठ ऋषि ने पूरा यज्ञ की जो योजना थी, व्यवस्थापन, वो अपने हाथ में लिया। वामदेव को साथ में लेकर इस भव्य यज्ञ की पूरी व्यवस्था, हर एक छोटी छोटी वस्तुओं को लेकर बड़ी बड़ी वस्तुओं तक सभी योजना उन्होंने बनाई। सभी अन्य ऋषियों को पुरोहित बनाकर कुंडों के सामने बिठाया। वो बड़ी ही, ऐसे कहते हैं कि श्रृंगी राजा के, श्रृंगी ऋषि के श्रेष्ठ मार्गदर्शन में, श्रेष्ठ नेतृत्व में, निर्देशन में, और वशिष्ठ राजा के श्रेष्ठ व्यवस्थापन के कारण ये अश्वमेध यज्ञ जो है वो सफल हुआ। फिर उसके बाद में पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने का निर्णय लिया गया। ऐसे कहा है कि जब अश्वमेध यज्ञ हुआ दशरथ राजा ने अपने पूर्वज रघु राजा के जैसे ही अपनी सारी संपत्ति, जितनी भी संपत्ति थी विश्व की, जितनी प्रॉपर्टी, जितनी भी मालमत्ता, जितना ऐश्वर्य, धन दौलत, सब कुछ संतों में लुटा दिया। उनके पास कुछ नहीं बचा। राजा का ये दातृत्व देखकर संतगण बड़े प्रभावित हो गए कि राजा कितना निष्प्रभ है। वो अश्वमेध के सफल होने पर इतने आनंदी हुए, आनंद में विरक्त भी हो गए, सब कुछ लुटा दिया, अपने लिए कुछ नहीं रखा। लेकिन राजा पर आदर के साथ और राजा पर प्रेम के साथ संतों ने जो है उसका सारा ऐश्वर्य उसको लौटा दिया। विनती किया उसको, कृपा करके आप ये ऐश्वर्य हमारा, आपको, हमने हमने आपको से प्राप्त किया है, तो आप दोबारा अपने पास ले लीजिए। फिर राजा ने बड़े प्रेम से उसको स्वीकार किया और फिर गौवें दान दी उनको, धान्य दान दिया, फल फूल दान दे दिया। इस प्रकार से बड़े धूमधाम से पूरी संपत्ति लौटाने के बाद में फिर संतों को दक्षिणा देकर संतुष्ट कर दिया। तो ये हमारा इतिहास और हमारा संस्कृति है, हमारी संस्कृति इस प्रकार की। संत जब प्रसन्न होते हैं तो किसी प्रकार की कमी रहती नहीं है, अगर आपके घर में कोई पवित्र कार्य करना है और आप संत को बुलाते हैं जो निष्प्रुव है, निष्पाप है, सद्गुण संपन्न है, कोई अपेक्षा रखने वाला नहीं है, निरपेक्ष है, ऐसे संतों के हाथ से जब यज्ञ होता है, उत्सव होता है, और उस यज्ञ में जब हम मेहमान के रूप में भी संतों को बुलाते हैं, ब्राह्मणों को बुलाते हैं, तो उस समय उस कार्य की सही सफलता होती है। और उस सफलता के लिए जो यजमान होता है, जो यज्ञ करता है, उत्सव बनाता है, ब्राह्मणों को हृदय से दान देता है, उसमें वो गिनती नहीं करता है, गणित नहीं करता है, लाभ और नुकसान की योजना नहीं बनाता है, दिल से दान देता है। और ब्राह्मण संतुष्ट होते हैं तो कहा गया कि जब ब्राह्मण संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं, वही हमारे मनुष्य जीवन के यश की चाबी है। यहाँ तक कि राक्षस के गुरु थे शुक्राचार्य, राक्षसों के वो बड़ी बलि महाराज उनके राजा थे, है तो दैत्य वो, लेकिन बलि महाराज भी जब यज्ञ करके शुक्राचार्य जैसे ब्राह्मणों को संतुष्ट करते हैं तो वो इतने शक्तिशाली और तेज पुंज बन जाते हैं, प्रकाश उनके चेहरे से फैलता था, देवता लोगों पर जब आक्रमण करता था वो यज्ञ करने के बाद, तो कई बार वर्णन आया है कि देवता लोग उसका तीव्र तेज देखकर प्रभावित होकर भाग गए, कह रहे थे इतना तेज, बृहस्पति को बता रहे हैं, देवताओं के ऋषियों को बता रहे हैं, इतना तेज हम झेल नहीं सकते हैं, इसके सामने खड़ा रहना मुश्किल है, भाग जाते थे। और कई बार ऐसे बलि महाराज ने आक्रमण करके देवताओं के राज्यों पर पूरा आक्रमण करके उसको अपना बना लिया था। तो रहस्य है मनुष्य जीवन का संतों की संतुष्टि, उसके पहले संतों का संबंध, संतों के संबंध होने से साधना प्राप्त होती है, भगवान का नाम प्राप्त होता है, और वो साधना करने के पश्चात संतों के आशीर्वाद उपदेश के अनुसार जीवन चलाते हैं, तो फिर जीवन में धन्यता आती है। मनुष्य के जीवन में संतों का आशीर्वाद बहुत आवश्यक है। सत्संग मनुष्य के जीवन का सर्वोच्च फल है, और सत्संग को प्राप्त करने पर जो उपदेश ज्ञान प्राप्त होता है उसको जब जीवन में हम उतारते हैं तो वही मनुष्य जीवन को सफल करने की सर्वोच्च विधि है। अगर हमारे अंदर कोई दोष होंगे भी, कोई त्रुटियां होंगे भी, लेकिन अगर संतगण हमारे पर प्रसन्न है, उनका आशीर्वाद हमारे शीश पर धारण है, तो हमारे जीवन में अंतिम यश मिलेगा। और वो यश क्या है? भगवान की प्राप्ति होगी। अभी हम देख ही रहे हैं इस अश्वमेध के बाद में पुत्र कामेष्टि यज्ञ की तैयारी हो गई, इसके बाद क्या होगा? संतों की संतुष्टि के बाद क्या हुआ? पुत्र कामेष्टि के यज्ञ के बाद क्या हुआ? कौन पुत्र जन्म लिया? वो पुत्र है परम भगवान प्राप्त हो गए। भगवान की प्राप्ति करनी है तो संतों का आशीर्वाद चाहिए। संतों का आशीर्वाद होने से भगवान प्राप्त हो जाते हैं। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात् न गति कुतोपि। इन संतों में से एक गुरु होते हैं, इनके ही कृपा से भगवान प्राप्त हो जाते हैं, भगवान की कृपा से संत प्राप्त हो जाते हैं। उसके बीच में हमारी इच्छा छुपी हुई है, हमारी इच्छा जब होती है तो भगवान की कृपा संत प्राप्त हो जाते हैं, उनमें से एक गुरु बन जाते हैं, और इनकी कृपा से फिर भगवत प्राप्ति होती है। ऐसा एक सुंदर चक्र है, पवित्र चक्र है। तो अश्वमेध के सफलता के बाद में पुत्र कामेष्टि की योजना बनाई गई, यज्ञ वेदी गरुड़ के आकार की बनाई गई। बड़ा विशिष्ट वर्णन किया गया है, क्यों बनाई गई विशिष्ट आकार गरुड़ का? क्योंकि गरुड़ जी ने गंधर्व आदि देवताओं को कष्ट दूर करने के लिए अमृत को प्राप्त किया था और अमृत को सबको दिया था, तो दशरथ के दुखों को दूर करने के लिए पुत्र के रूप का अमृत देने के लिए उन्होंने गरुड़ के आकार का यज्ञ वेदी बनाई। और इस पुत्र कामेष्टि यज्ञ जब हो रहा था तो बीच में क्या क्या घटनाएं हुई उसका वर्णन हम अगले सत्र में करेंगे। हरे कृष्ण।